लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हर मानव अपने जीवन को पूर्ण रूपेण जीने की चाह रखता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की चाहत यही होती है कि हम अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह पूरा करें, जिससे हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसके लिए जहाँ तक बन पड़े हम अपने को शत प्रतिशत देने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें शत प्रतिशत प्राप्त हो। इस भांति हमारा प्रयास और हमारी चाह हमें यही बतलाती है कि मानवीय स्वभाव के अनुरूप हम अपने में सर्वोत्तम अर्थात हम में पूर्ण होने की अभिलाषा है, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं। श्रोताओ, आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सातवें सामान्य रविवार का सुसमाचार पाठ हमें उसी पूर्णता की याद दिलाता है और हमें स्वर्गीय पिता की भांति अपने में पूर्ण होने का आह्वान करता है। हमारी यह पूर्णता दुनियावी परिपूर्णता से भिन्न है, जिसके लिए हमें यीशु ख्रीस्त दिशा निर्देश देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि ईश्वरीय परिपूर्णता के मार्ग में बढ़ने हेतु हमारे मन और हृदय में किस तरह के मनोभाव व्याप्त हैं? अपनी परिपूर्णता की चाह में हम दुनियावी मार्ग का चुनाव करते या यीशु ख्रीस्त द्वारा बतलाए गए नियमों के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करते हैं?
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का क्या दावा कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है।
श्रोताओ, ईश्वर के सुमधुर वचन जो सुनने में हमारे लिए अति कड़वे लगते हैं, हमें अपने जीवन की सत्यता से रूबरू होने में मदद करें, जिससे हम अपने जीवन में उन बातों का चुनाव कर सकें जो हमें सही अर्थ में स्वर्गीय पिता की तरह पूर्ण बनने में मदद करती है।
अपनों को तो सभी करते हैं प्यार।
श्रोताओ, पुराने व्यवस्थान के लेवी ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें मूसा के द्वारा इसराइलियों के लिए दिए गए निर्देश को प्रस्तुत करता है। पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। यह निर्देश हम सबों के लिए है क्योंकि हम सभी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। इस निर्देश को यदि हम अपने परिवार के संदर्भ में रखें तो यह वैसा ही होगा जैसा कि माता पिता अपने बच्चों को परिवार में अच्छे और सच्चरित्र होने की शिक्षा देते हैं। हमारे समाज में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने संतान को बुरा बनने की शिक्षा देते हों। अपने जीवन में चाहे वे कितने भी खराब क्यों ना हों, लेकिन उनकी चाह यही रहती है कि उनका बेटा या बेटी अपने में सच्चरित्रवान हो, वह अच्छा कार्य करे और समाज में अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो। श्रोताओ, जिस तरह हम अपने संतानों से अच्छा बनने की चाह रखते हैं, वैसे ही ईश्वर के संतान के रूप में वे हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा और पवित्र बने, क्योंकि वे स्वयं अपने में पवित्र हैं। इस पवित्रता की शुरुआत हमारे परिवारों और पड़ोस से होती है, जहाँ से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। अतः पहला पाठ हमें अपने भाइयों और पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाए रखने, उन्हें प्रेम करने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करता है। श्रोताओ, इस भांति यदि हम अपना जीवन ईश्वरीय योजना के अनुरूप सुंदर बनाते जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, तो हम उनके मंदिर अर्थात उनके निवास स्थल बनते हैं, जैसा कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें कहता है, आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वे आप लोग हैं। अतः यदि हम अपने मानवीय जीवन की बात करें तो हमारा यह जीवन हमारा अपना नहीं, वरन यह ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें अपनी सेवा पूजा करने, अपनी महिमा करने हेतु यह सुंदर जीवन दिया है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को अपने निष्ठा में उनके लिए करते हुए पूरा करते हैं। इसी कारण आज का दूसरा पाठ हमें कहता है कि हम अपने को धोखा ना दें, यह समझते हुए कि दुनिया की चीजें जिसे हमने कमाया या अर्जित किया है मेरी हैं या मेरी बुद्धिमता की कमाई है, ये हमारी नहीं वरन हमारे लिए ईश्वर के वरदान हैं, जिससे हम अपने जीवन में खुश रह सकें और हमारी खुशी में जीवन दाता ईश्वर की महिमा होती रहे। श्रोताओ, इस तरह आज का सुसमाचार हमें अपनी नम्रता में बने रहने का आह्वान करता है, जहां हम अपने दैनिक जीवन में आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के मनोभाव से ऊपर उठने हेतु बुलाए जाते हैं। आज का सुसमाचार पर्वत प्रवचन का वह भाग है जहां यीशु ख्रिस्त हमारे लिए संहिता के नियमों को एक नए रूप में परिभाषित करते हैं। अपने पर्वत प्रवचन में यीशु ने हमारे लिए पुराने व्यवस्थान के नियमों की एक नई व्याख्या दी। उन नियमों के अनुरूप अपने जीवन को जीकर उन्होंने हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण दिया है। वे हमें भी इन नियमों का अनुपालन करने का आह्वान करते हैं, जो आज के परिवेश में हमारे लिए एक वृहद चुनौती लगती है। श्रोताओ, आज के प्रभु वचनों का संदेश हमारे लिए यही है कि हम अपनी पवित्रता में पूर्णता को प्राप्त करने हेतु बुलाए गए हैं, क्योंकि त्रित्व में ईश्वर अपनी पवित्रता में पूर्ण है। यह पूर्णता हमारे लिए प्रेम के मार्ग में चलने का निमंत्रण है, जिसके लिए हमें नम्रता के कदमों की आवश्यकता है, जिसे यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन के द्वारा हमें दिखलाया है। आइए हम त्रित्व में ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपनी ज्योति से प्रज्वलित करें, जिससे हम प्रेम के इस मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ सकें, जो हमें संपूर्ण जीवन की ओर ले चलती है।
अपना को तो वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम एलियेव से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन एवं वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकातें की। मुलाकात में उन्होंने द्विपक्षीय अच्छे संबंधों के विकास पर संतुष्टि व्यक्त की। खासकर कैथोलिक कलीसिया द्वारा देश के विकास पर योगदान की सराहना की गई। संत पापा फ्रांसिस ने जर्मनी के हनाओ शहर में गोलीबारी के शिकार लोगों एवं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की। संत पापा फ्रांसिस की ओर से वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने 21 फरवरी को एक तार संदेश प्रेषित किया। बीबीसी के अनुसार जर्मनी के हनाओ शहर में 20 फरवरी को दो जगहों में गोलीबारी हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। फुल्दा के धर्माध्यक्ष मिखाइल गर्बर को प्रेषित तार संदेश में कार्डिनल परोलिन ने लिखा, संत पापा फ्रांसिस हनाओ में भयंकर हिंसक घटना की खबर सुन अत्यंत दुखी है, जिसने निर्दोष लोगों की जानें ले ली हैं। उन्होंने लिखा कि संत पापा शोक संतप्त लोगों के दुखों को साझा करते हुए उनके प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करते हैं तथा मृतकों को करुणावान ईश्वर को समर्पित करते हैं। वे जीवन के मालिक प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु से शोकित हैं, वे उन्हें सांत्वना प्रदान करें। संत पापा उन पर ईश्वर की आशीष और शांति की कामना करते हैं। समाचार रिपोर्टरों के अनुसार बंदूकधारी टोबिस राथ जैन, एक संदिग्ध दूर दराज उग्रवादी, अपनी मां के साथ अपने घर पर मृत पाया गया था। मरने वालों में तुर्की, बुल्गारिया, बोस्निया और रोमानिया के लोग थे। तुर्की पृष्ठभूमि के लोग जर्मनी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। धर्माध्यक्ष गर्बर ने वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए विभिन्न मूल लोगों के बीच वार्ता और मित्रता के लिए जगह बनाने के महत्व पर जोर दिया। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 21 फरवरी को कार्डिनल अंजेलो बेचू के नेतृत्व में परमधम पीठे संत प्रकरण परिषद द्वारा संत और धन्य घोषणा के लिए प्रस्तावित आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया, जिसमें भारत के 18वीं सदी के शहीद धन्य देव सहायम को संत घोषित किया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने 2 धन्यों की संत घोषणा और 8 ईश सेवकों की धन्य घोषणा के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: धन्य देव सहायम, जो एक लोक धर्मी थे, विश्वास के कारण घृणा के शिकार हुए थे। उन्हें 14 जनवरी 1752 में मार डाला गया था। धन्य यीशु की मरिया फ्रांचेस्का जो जुआन की कपोचिन त्रित्यक धर्म बहनों की संस्थापिका हैं, उनका जन्म इटली में 14 फरवरी 1844 को एवं निधन उरुग्वे में 6 अगस्त 1904 को हुआ था। ईश सेवक कार्लो अकोतिस जो एक लोक धर्मी थे, उनका जन्म 3 मई 1991 को लंदन में और निधन 12 अक्टूबर 2006 को इटली में हुआ था। ईश सेवक शहीद रुतिलियो ग्रांदे ग्राचा यीशु समाजी पुरोहित थे और उनके दो साथी जिन्हें 12 मार्च 1977 में विश्वास के कारण मार डाला गया था। ईश सेवक इमेलियो वेंटोरियो धर्म प्रांत पुरोहित थे। वे दुखों की माता मरियम के सेवक धर्म बहनों के संस्थापक थे। ईश सेवक पीरो स्कावेत्सी धर्म प्रांत पुरोहित थे। ईश सेवक इमेलियो रेकिया हमारे प्रभु यीशु मसीह के पौत्र घाव के धर्म संघी पुरोहित थे और ईश सेवक मरिया हिलियार पुलिदो एक लोक धर्मी थे। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार 21 फरवरी को वैटिकन में विधि निर्माण की परमधम पीठ समिति के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें कलीसियाई कानून के प्रेरितिक स्वभाव पर जोर दिया। अपने संबोधन में संत पापा ने गौर किया कि समिति उन्हें कानून संबंधी कार्यों में मदद करती है। वह उनके लिए कानून की व्याख्या करने में सहायता देती, वैटिकन के दूसरे विभागों में कानून संबंधी बातों में मदद करती तथा कलीसिया के लिए विधायकों द्वारा अधिनियमित मानदंडों के लेखों की वैधता की निगरानी करती है। संत पापा ने कहा कि समिति धर्माध्यक्षों एवं धर्माध्यक्ष सम्मेलनों को नियमों की सही व्याख्या एवं लागू किए जाने में मदद देती है और सामान्य रूप से नियम के ज्ञान और उस पर ध्यान दिए जाने में मदद करती है। संत पापा ने कहा कि यह आवश्यक है कि कलीसिया के नियमों के सच्चे अर्थ को गहरा और पुनः प्राप्त किया जाए जो ख्रिस्त का रहस्यात्मक शरीर है। उन्होंने विश्वासियों को कलीसिया के कानून के प्रेरितिक स्वभाव को समझने में मदद देने पर जोर दिया ताकि आत्माओं की मुक्ति एवं न्याय के सद्गुण के पालन की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा सके। संत पापा ने कलीसियाई कानून के प्रेरितिक स्वभाव पर भी प्रकाश डाला जो प्रेरितिक प्रभावशीलता के लिए बाधक नहीं है बल्कि समाधान की खोज की गारंटी है जो मनमाना नहीं किंतु सच्चा न्याय है, अतः यह सच्ची प्रेरिताई है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, बिना कानून वाला समाज अधिकारों से वंचित समाज होगा और आज जहां विश्व युद्ध को छोटे छोटे रूपों में लड़ा जा रहा है वहां हम हमेशा देखते हैं कि कानून का अभाव है। कानून के अभाव में तानाशाही शासन का जन्म और विकास होता है। कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया के कानून के संबंध में जिस पर समिति आम सभा में अध्ययन कर रही है, संत पापा ने कहा कि धर्माध्यक्षों को अपने क्षेत्र में सजग होना चाहिए। उन्हें विश्वासियों के बीच न्यायाधीश की भूमिका अदा करनी चाहिए। धर्माध्यक्षों का कार्य ईश्वर की प्रजा के बीच एकता लाने से प्रेरित होनी चाहिए, अतः दंड दिया जाना सबसे अंतिम सहारा होना चाहिए। संत पापा ने कहा कि कलीसियाई कानून का महत्व किसी राज्य के कानून के समान नहीं बल्कि प्रेरितिक होना चाहिए। यह न केवल कलीसियाई समुदाय के लिए बल्कि दोषी व्यक्ति की भलाई के लिए भी हो। उन्होंने कहा कि कानूनी सजा प्रतिरोधी साधन मात्र न हो बल्कि औषधि के रूप में हो जो राज्य के विस्तार एवं विश्वासी समुदाय में न्याय के निर्माण के लिए एक सकारात्मक साधन हो जो व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पवित्रता के लिए बुलाई गई है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।